श्री उपदेशामृत के ऊपर जो हमारी चर्चा थी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले महीने हमने श्री उपदेशामृत के आमुख के ऊपर चर्चा किया था और प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। आमुख में श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कि इस ग्रंथ का महत्व क्या है और क्यों ये भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, जो पहले गोस्वामी और तदनंतर शुद्ध भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। जो खास नौसुखिया भक्त जो हैं उनके लिए, यानी हम सब के लिए, ताकि बड़ी आसानी से हम भगवान की शुद्ध भक्ति के जो मार्ग है उस पर अग्रसर होते रहे। प्रथम श्लोक में दो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा किया और वो था प्रायश्चित क्या है और तपस्या क्या है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं शिष्या। तो ये छह प्रकार के जो वेग हैं, प्रमुख रूप से तीन वेग हैं, जिह्वा वेग, मन का वेग और शरीर का वेग। ये तीन वेग कायेन मनसा वाचा कर्मण, ये वेगों को जो नियंत्रण कर सकता है वो गोस्वामी है। इसीलिए वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी गोस्वामी कहते हैं, जिन्होंने इन तीनों को नियंत्रण किया है और भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश की। तो प्रभुपाद जी इसकी शुरुआत पश्चाताप से करते हैं। सच्चा पश्चाताप का मतलब है भगवान के सुत प्रेम जो हर एक जीव में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है, साध्य को बिना, कोई साध्य चीज नहीं है ये, तो इसको जागृत करने का जो तरीका है वो प्रायश्चित है, यानी भक्ति और श्रवणादि शुद्ध चित्त करो ये उदय। तो श्रवण कीर्तन द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा, खास करके श्रवण कीर्तन, खास करके भगवान नाम के गुणगान के द्वारा, नाम जप के द्वारा। और दूसरा तपस्या है, तपस्या यानी फिर से वो ही काम नहीं करना जो मैं इस भौतिक बंधन में फंसा है, यानी मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार, चार प्रकार के अधर्म है, तो इससे बचना। इसीलिए दीक्षा के समय हम ये दो खास वचन लेते हैं, तीन मुख्य रूप से। प्रथम के हम नियमित 16 माला जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का माला पे, दूसरा चार नियमों का पालन करेंगे और तीसरा प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में दास दासानुभाव भाव से भक्ति करेंगे जो हमारा नित्य स्वरूप है। गोपी भरतुर पद कमल यो दास दासानुदास। तो ये पहला श्लोक हो गया। और किस तरह से जिह्वा उदर उपस्थ वाचो वेगम मनस जीव इत्यादि को उल्टे सीधे चीजों में लगाने के बदले डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगाने से अपने आप नियंत्रित हो जाते, ये चर्चा हुआ। तो दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक अभी ये जो आने वाले 3-4 दिन है उसमें कोशिश करेंगे कि दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। एक्चुअली पहला 8 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेश सारम, उपदेश का सार पहले 8 श्लोकों में बताए गए। अगर इस 8 श्लोकों को अच्छी तरह से हमने समझ लिया और उसको अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, इसी जीवन वापस हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है इन श्लोकों को। तो दूसरा श्लोक कहता है छह चीज जो प्रतिकूल है इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, और तीसरा श्लोक कहता है छह चीज जो अनुकूल है छय वेग दमी, छह वेगों को दमन करना, छय दोष शोधी, छह दोषों को शुद्ध कर देना, निकाल देना हमारे जीवन से, छय गुण देहोदास, छह गुण चाहिए, कौन सा गुण, ये उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवृत्ति, छय सत्संग, और छह प्रकार के सत्संग है भक्तों के साथ संग करना, छय सत्संग देहो है आमाए बसे छी संगे रास, और ये सब भक्तों के भगवान के भक्तों के संग में ही हो सकता है, एकांत में हम नहीं कर सकते, इसलिए तो ये छह प्रतिकूल चीज जो भक्ति को नाश कर देता है उसका वर्णन है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति षड्भिर्भक्ति विनश्यति, छह प्रकार ये छह चीज जो है भक्ति का विनाश कर देता है, षड्भिः छह चीज। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं से अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। एक अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा प्रयासश्च, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। तीसरा प्रजल्पो, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। चौथा नियमाग्रह, शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। जनसंगश्च, पांचवा ऐसे सांसारिक व्यक्तियों के की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, तथा छठा लौल्यम च, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना। तो आज हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना ये छह चीज अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। प्रभुपाद जी उपदेशामृत में इसको कुछ हद तक समझाए हैं, और सज्जन तोषणी नाम के एक पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर ने ये 12 चीजों के ऊपर, 6 प्रतिकूल और 6 अनुकूल चीजों पर एक एक ऐसे लिखे, उन्होंने एक एक ऐसे को क्या कहते हैं निबंध लिखा, एक 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 विषय के ऊपर एक एक निबंध लिखे हो, तो वो और ये इन दोनों के आधार पर मैं कुछ संग्रह किया हूं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा जो श्लोक है इसका महत्व क्या है, इस दूसरे श्लोक की जो मतलब है इसको गहराई में आलोचना करना बहुत जरूरी है। जो लोग दृढ़ इच्छा रखते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, इन जो निर्देशन है इनके अवहेलना करने से भगवान हरि की भक्ति जो बहुत ही दुर्लभ है वो निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी अगर इसकी दुर्लक्ष करेंगे या अवहेलना करेंगे। प्रभुपाद जी इस श्लोक के शुरुआत में समझाते हैं कि मनुष्य जीवन जो है सादा जीवन उच्च विचार, हमारा जीवन को सरल से सरल बनाना और विचारों को ऊंचा से ऊंचा पहुंचाने की कोशिश करना। पर दुर्भाग्यवश मनुष्य जीवन उच्च जीवन सादा विचार हो गया। एक्चुअली उच्च जीवन मतलब क्या, 145वें माले पे रहते, बहुत ऊंचा जीवन, पर विचार सादा है। कैसा खाना, कैसा सोना, कैसे बच्चा पैदा करना, कैसा अपने आप की रक्षा करना, बस आहार निद्रा भय मैथुन। वो बिल्डिंग के ऊपर जो पक्षी बैठी है वो जो कर रहा है वही चार चीज वो बिल्डिंग में रहने वाला भी कर रहा है, और कुछ फर्क ही नहीं है उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैदिक संस्कृति का मतलब है सादा जीवन, उच्च विचार, अपने जीवन को जितना से जितना सरल हो सके सरल बनाना और विचार को उच्च कोटि तक ले जाना। यानी धर्म से ही अपवर्ग से अर्थ होता है जीव से तत्व जिज्ञासा। ये जिज्ञासा करना कि मनुष्य योनि से जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हमेशा सोचना, ये एक्चुअली उच्च विचार है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि क्योंकि हम सब बद्ध जीव जो इस भौतिक संसार में हैं, भगवान की बहिरंग शक्ति में फंस गए, इसीलिए जेल यही है, जेल है ये एक्चुअली। भौतिक संसार एक जेल है। दुर्गा, दुर्गा देवी जो, दुर्ग मतलब जेल, दुर्गमनम, यहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो इस भौतिक संसार की रचना ऐसी की गई है कि सिर्फ बेसिक हमारा खाना पीना देखने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्रेष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्ष घर्षण, संघर्ष करना पड़ता है सिर्फ खाना पीना सब ठीक ठाक चलने के लिए। आज की दुनिया में इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो काम करना तो जरूरी है। नहीं कश्चित क्षण जातु तिष्ठति अकर्म कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जेरुने। हर एक व्यक्ति को काम करना पड़ता ही है। तो काम तो करना जरूरी है क्योंकि जीव जो है अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति के बीच में तटस्थ शक्ति है, और तटस्थ होने के कारण हम जो बद्ध जीव हैं वो सब बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आ गए हैं, और हम भूल गए हमारी मूल परिस्थिति को। अंतरंग शक्ति मतलब जो कभी भूलता नहीं अपना मूल स्थिति को, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जो मुक्त जीव है, मुक्त जीव और बद्ध जीव में ये अंतर है, मुक्त जीव अपनी परिस्थिति को, मूल परिस्थिति को कभी भूलता नहीं हो, वो हमेशा जानता है कि मैं हमेशा कृष्ण का दास हूं और दास तुम्हें ही सेवा करते रहता है। तो जब वो अंतरंग शक्ति में रहता है तो अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शन करता है, दर्शित करता है वो। महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा कौन है? 10 लोगों ने महात्मा बुलाया, वो महात्मा नहीं है। हर राज्य में एक एक महात्मा, हर देश में अपने अपने महात्मा होते, वो महात्मा नहीं। भगवान कहते हैं महात्मानस्तु, महान आत्मा, परमात्मा के साथ जिसका संपर्क है वो महान आत्मा। सबसे महान आत्मा तो भगवान है। जिन के जिस व्यक्ति का महान आत्मा भगवान के साथ संपर्क है वो महात्मा है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, अंतरंग शक्ति में हमेशा शरणागत है। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है। ज्ञात्वा भूतादि मवेयम, वो जानता है भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, इसको कभी भूलता नहीं है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। तो ये महात्मा जो है अपनी इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान की सेवा में हमेशा लगाता है, वो महात्मा है। पर दुरात्मा कौन है? दुरात्मा वो है जो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब कृष्ण की इंद्रियों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं वो प्रेम का स्वरूप है, और वही जब इच्छा अपनी इंद्रियों को पूर्ण करने में कोशिश करते हैं वो दुरात्मा है। दुरात्मा मतलब बड़ा स्वार्थी है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी को कुछ भी करने के लिए तैयार है किसी हद तक जाने के लिए तैयार। कुछ लोग एकदम स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ और दूसरों का विस्तृत स्वार्थ। अब बोलेंगे विस्तृत स्वार्थ क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ मतलब मैं अपने जीने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए, किसी को भी मारने के लिए तैयार हूं, किसी को कुछ करने के लिए तैयार, वो बड़ा व्यक्तिगत स्वार्थ है। विस्तृत स्वार्थ मतलब थोड़ा विस्तृत, मेरा विस्तृत स्वरूप मतलब क्या, मेरा परिवार, तो मेरे परिवार को ठीक ठाक रखने के लिए मैं बगल के परिवार को मारने के लिए तैयार हूं, कि कोई भी तकलीफ देने के लिए तैयार हूं, या मेरा विस्तृत परिवार जनस्य मोहोयम अहम मम मम, ये मेरा समाज है, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा देश ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, या मेरी जाति यानी मानवता। मानवता के लिए लोग प्रयास करते हैं, वो भी एक प्रकार का विस्तृत स्वार्थ है। मानवता के ऊपर बड़ा बड़ा चर्चा करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट क्लास चिकन बिरयानी बना के खाते सब, उनको लगता है कि जो मनुष्य के अलावा दूसरे जीव हैं वो हमारे खाने के लिए बनाए गए। तो ये विस्तृत है। तो कभी कभी ये बड़े व्यक्तिगत स्वार्थी लोग थोड़ा एक उदार स्वभाव का काम करते हैं, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा माया मानवता के लिए, और ये भी एक्चुअली इसमें लेश मात्र भी आध्यात्मिक चीज नहीं है। इसमें भले देश के लिए मर मिट जाए, क्यों देश, क्योंकि मेरा देश है ये, और क्यों मेरा देश, क्योंकि मैं ही पैदा हुआ ना इधर, मेरा भारत महान, क्यों महान, क्योंकि मैं यहां पैदा हुआ भारत महान इसलिए नहीं है कि बड़े महात्मा लोग वहां पैदा हुए, ये शरीर पैदा हुआ ना भारत में, इसीलिए मेरा भारत महान। तो विस्तृत स्वार्थ है वो, तो वो कभी कभी तथाकथित दूसरों की भलाई के लिए बहुत सारे वाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारवाद इत्यादि बहुत सारे वाद निकालते हैं और इस पे काम करते हैं, पर इसमें लेश मात्र भी आध्यात्मिक चीज नहीं है और कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला, आध्यात्मिक फायदा नहीं होने वाला। तीन गुणों जो तीन प्रकार के क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, ये क्लेश से नहीं बचने वाले लोग। और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो उसमें से निकल नहीं सकते ऐसे लोग। ये कोई वाद जो है, भले राष्ट्रवाद हो, परोपकारवाद हो, मानवतावाद हो, ये इनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से या बहिरंग शक्ति के जो चक्कर से निकाल नहीं सकता क्यों? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, एक ही तरीका है भगवान की शुद्ध भक्ति, उसके अलावा दूसरा जो मार्ग है, दूसरा कोई वाद है, ये हमें भगवान की जो बहिरंग शक्ति है इसमें से नहीं निकाल सकता। तो अब सवाल ये उठता है, हमको तो खाने के लिए भी कमाना पड़ेगा, कुछ तो कमाना पड़ेगा, कुछ तो संग्रह करना पड़ेगा, पर कैसा कार्य करें और कितना संग्रह करें जिसके द्वारा हमारा कार्य भी चलता रहे, जीवन भी निर्वाह होता रहे, और साथ साथ में बंधन में ना फंसकर भगवान की भक्ति में प्रगति करते रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये चीज यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हर एक व्यक्ति की जरूरती क्या है, हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए, कुछ तो संग्रह करना चाहिए खाना, कपड़ा चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान थोड़ा रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, सर के ऊपर कुछ एक छप्पर तो चाहिए तो ये चीज के लिए हर एक व्यक्ति को ये चाहिए, ये जरूरी है बेसिक। और पर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा किए तो भी तकलीफ हो जाता है, और जरूरत से कम भी किए तो भी तकलीफ हो जाता है। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नैसर्गिक नियम ऐसा है कि मनुष्य योनि के नीचे जो जितने सारे और योनियां हैं, 80 लाख योनियां, इन योनियों में कभी आप देखेंगे जरूरत से ज्यादा स्वीकार नहीं करते वो, और जरूरत से ज्यादा संग्रह भी नहीं करते वो। इसीलिए उनके समाज में कोई प्रकार का आर्थिक समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुआ। उन लोगों के समाज में कभी ऐसा अकाल पड़ गया और राशन में थोड़ा थोड़ा मिलता है आजकल, ऐसा कभी नहीं देखेंगे आज मनुष्य योनि के नीचे के समाज। सिर्फ मनुष्य योनि में ये सब समस्या, उनकी कभी मांग कम पड़ गई, जरूरत से कम पड़ गया, कभी ऐसा नहीं होता है। आर्थिक समस्या उनके जीवन में कभी नहीं आती, हमेशा खुश रहते सब लोग। सुंदर उदाहरण देते प्रभुपाद, अगर आप रास्ते के ऊपर एक बड़ा थैली अनाज का डाल दो, खोल के रख दो, उधर चिड़िया आएगा, एक बैठेगा, अपना कुछ दाना लेगी, चले जाएगी, बस 10 चिड़िया लोग आएंगे, अपना अपना लेंगे। हमारे मंदिर के बाहर, मंदिर के एक छोटा सा बगीचा हमने बनाया वृंदावन फॉरेस्ट, तो वहां इतना हम लोग डालते हैं, एक बड़ा प्लेट में भर के अनाज डालते हैं, हजारों चिड़िया आते खाते चले जाते। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कितने कम बुद्धि वाले लोग, ये लोग सीधा थाली उठा के रख लिया तो महीने भर का हो जाएगा इनका, हमारी बुद्धि जाती नहीं ऐसा। पर वो लोग आते हैं, उनको 4-5 दाना लेते, आप दुकान में भी देखिए उड़ के आते चिड़िया, बैठते वो थैली के ऊपर, 4-5 दाना लेके चले जाती, बस खत्म। पर वही सड़क के बीच में एक बड़ा 100 किलो का एक अनाज का बोरी खोल के रख के चले जाइए, एक आदमी आएगा, पहले लेगा, पहले खाएगा, जितना हो सकेगा खाएगा, फिर जेब में भरेगा, बाद में देखेगा कोई नहीं है तो थैली को भी उठा के ले जाएगा, महीने भर का समस्या हल हो गया। तो ये स्वाभाविक है, और इसीलिए मानव समाज में ये सब समस्या आती, बड़ी बड़ी आर्थिक समस्या और स्केयरसिटी, कम पड़ गया किसी चीजों का, तो इस तरह से। पर संग्रह करना जरूरी है और कमाना जरूरी है, सब ये तो कोई सवाल ही नहीं होगा। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि अत्याहार, अति आहार, ये दो शब्दों से बना हुआ है, अति यानी जरूरत से ज्यादा, और आहार यानी खाना या संग्रह करना। तो अत्याहार षड्भिर भक्ति विनश्यति, क्योंकि अति आहार करेंगे तो भक्ति की विनाश हो जाती है। जिह्वा का इच्छा है जरूरत से ज्यादा खाना, और पेट का उदर वेगम जिह्वा वेगम, ये पिछले बार पिछले श्लोक पे चर्चा हो गया है, जिह्वा वेगम उदर वेगम, जिह्वा का वेग है अच्छे अच्छे पदार्थों को खाना, और उदर का वेग है और ज्यादा भरना। तो अगर रूप गोस्वामी ने पिछले श्लोक में ऑलरेडी कह दिया है, तो 11 श्लोकों में जो का सार है उसमें फिर से दोहराएंगे नहीं, अगर दोहरा रहे हैं इसका मतलब कुछ और है, तो फिर से नहीं दोहराएंगे। जैसा आपको एक टेलीग्राम भेजना है तो उसी वाक्य को बार बार नहीं लिखेंगे, लाइटनिंग टेलीग्राम भेजना है या मैसेज देना है, एक एक शब्द के लिए भी अगर 50 रुपया लिखना है, सोच समझ के एक बार लिखते बस। तो रूप गोस्वामी ने पूरा उपदेश अमृत सार को अगर 11 श्लोक में लिखा है, तो वो की उसी श्लोक को बार बार फिर से नहीं लिखेंगे, उसी शब्द को फिर से नहीं लिखेंगे। तो अगर जिह्वा वेगम उदर वेगम ऑलरेडी बोल दिया उन्होंने, तो यहां अत्याहार का मतलब कुछ और भी होना चाहिए। तो आहार का दूसरा मतलब है भोजन, भोजन का एक है खाना इसका मतलब, और दूसरा है इंद्रियों को उसके विषय वस्तु प्राप्त करना, ये भी एक भोजन है। आंखों को उसका विषय वस्तु, कान को उसका विषय वस्तु, जीवा को उसका विषय वस्तु, नाक को उसका विषय, त्वचा को उसको विषय वस्तु, इसको कहते हैं आहार, इसको भी कहते हैं भोजन अति। तो जरूरत से ज्यादा इंद्र तृप्ति, ये यहां मना किया गया है। पर आहार तो जरूरी है, बिना आहार के आदमी ने रह नहीं सकता। विषय है, इंद्रियां है, इंद्रियों को तृप्त करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को तृप्त किए बिना कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता। जैसे भगवान कहते हैं गीता में तीसरे अध्याय के पांचवें और छठे श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। ये शरीर की रचना ऐसे की गई, इंद्रियों को तृप्त करना जरूरी है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। इंद्रियों को बाहर से बंद करके रखा है पर अंदर ही अंदर सोच रहा है कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो मिथ्याचार है। तो इंद्रियों को तृप्त करना बहुत जरूरी है, बिना तृप्त किए जीवित नहीं रह सकता आदमी। एक काल्पनिक है कि कोई सोचना कि बिना खाए मैं जिंदगी भर रहूंगा, तो खाना तो है, संग्रह करना तो है। पर फिर कहते हैं भगवान छठे अध्याय में, न अति अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। न अति 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 को त्याग देना बहुत जरूरी है। एक जो व्यक्ति योग में लगा हुआ है, योग के मार्ग में लगा हुआ है, न अति अश्नतस्तु, जो जरूरत से ज्यादा खाता है या जरूरत से कम खाता है, अनश्नतः न च अति स्वप्नशील, जो बहुत जरूरत से ज्यादा सोता है या जरूरत से कम सोता है, वो आध्यात्मिक जीवन में सही तरह से प्रगति नहीं कर पाता। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसा युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार युक्त, आहार युक्त, विहार युक्त, कर्म यानी जितना कमाने के लिए, रहने के लिए, संग्रह करने के लिए, युक्त चेष्टसा, चेष्टा करना है, कोशिश करना है जितना, बस। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जरूर से ज्यादा सोना नहीं, जरूर से कम सोना नहीं, योगो भवति दुःखः। तो अति को त्यागना और युक्त को स्वीकार करना ये कहा गया है। एक जगह कहा गया कि एकदम भी नहीं कर सकते और दूसरा कहा गया अति भी नहीं कम भी नहीं। तो फिर कितना, भगवत गीता के अंत में है माम एकम शरणम ब्रज। अंततः गीता का संदेश है शरणागति। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की शरण जाना, तो शरण जाने के लिए इस साधन को ठीक ठाक रखने के लिए जितना जरूरी है उतना स्वीकार करना और उससे ज्यादा नहीं, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ये कहते हैं युक्त वैराग्य। तो ये अत्याहार का मतलब है युक्त वैराग्य। रूप गोस्वामी अत्याहार को अगर सार बताएंगे, अनुकूल्य, शरणागति का मतलब क्या है, अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भी अनुकूल है उतना स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना, वर्जनम। तो एक ही श्लोक में ये अत्याहार का सार हो गया युक्त वैराग्य। रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। अनासक्तस्य विषयान, विषयों के प्रति आसक्ति न होकर यथार्हम उपयुंजतः, जितना जरूरी है उतना ही खाना, उतना ही संग्रह करना। निर्बंध कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध में प्रगति के लिए जितना अनुकूल है उतना स्वीकार करना, युक्तम वैराग्य मुच्यते। पर प्रापंचिकतया बुद्ध्या, प्रापंचिकति मतलब प्रपंच मतलब भौतिक, प्रापंचिकतया बुद्ध्या भौतिक बुद्धि में आकर हरि संबंधी वस्तु न, हरि के संबंध में उपयोग किया जाने वाला वस्तु को, हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्यागो, मैं मोक्ष के मार्ग में जाना चाहता हूं, सब छोड़ देना चाहता हूं, वैराग्यम फल्गु कथ्यते, ये फल्गु वैराग्य। तो ये दोनों जो वैराग्य का, फल्गु और युक्त वैराग्य का जो श्लोक है, इसका सार है अगर एक श्लोक में बताया, एक शब्द में बताया जाए, अत्याहार त्याग दो, अति आहार त्याग दो, और अति या एकदम कम भी नहीं, एकदम ज्यादा भी नहीं। तो बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं, भोग करने की इच्छा से जब स्वीकार करते हैं उसको कहते हैं अत्याहार। एक मतलब उसका यह है, जितना जरूरी है उतना स्वीकार करना, पर कभी कभी हमको क्या लगता है थोड़ा अच्छा लग गया और थोड़ा चार पांच, वो भोग की इच्छा से जब ज्यादा लेते हैं वो अत्याहार हो गया। पर अगर तीन चीज रखा जाए तो अत्याहार दूर किया जा सकता है। वो कहते हैं जितना जरूरी है उतना प्रामाणिकता से, अगर भीम जैसे हैं आप, भीम कर्मा वृकोदरह, भीम जैसा काम करते तो भीम जैसा खाइए। वो पांच पांडवों से ज्यादा खाता था, चार जो पांडव थे और कुंती महारानी द्रौपदी थी, वो पांचों मिलके इतना खाते थे उसका दुगना खाता था, पर काम भी ऐसा करता था वो। अगर आप ऐसे काम कर रहे तो उतना खाइए। एक बार एक व्यक्ति ने एक सन्यासी से पूछा, महाराज ये युक्त मतलब कितना, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो महाराज ने बोला, देखो मैं दो परमहंस महाभागवतों का उदाहरण देता हूं, एक है भीमसेन और दूसरे है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो भीमसेन जो था 10 लोगों का एक साथ खाता था, पर काम भी 10 लोगों का करता था। तो तुम अगर 10 लोगों का काम कर रहे हो तो 10 लोगों का खाना भी खाओ, कोई चिंता नहीं। और दूसरे है रघुनाथ दास गोस्वामी, 3 या 4 दिन में हथेली भर अगर थोड़ा छाछ भी पीने लगे तो बोलते कितना कितना मैं अपना शरीर के लिए टाइम पास कर रहा हूं। यही अगर समय भगवान की भक्ति में निकाला होता तो कितना अच्छा होता। प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति के अनुकूल के लिए जितना जरूरी है उतना स्वीकार करना, दूसरा जितना जरूरी उतना पर जो अनुकूल है वो ही जरूरी। हमको बहुत सारी चीजें हैं, नहीं 2 अंडा बस दिन में, या महीने में एक बार, और कुछ नहीं जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो। एक तो है जितना जरूरी उतना, दूसरा वो जो चीज है भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है क्या, और तीसरा न केवल जितना चाहिए उतना और जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, पर वो जो स्वीकार कर रहे हैं उसको भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना, उसको प्रसाद के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में, तब अत्याहार से हम बच सकते हैं। जितना जरूरी उतना, जो अनुकूल है भगवान की सेवा में उसको, और वो भी भगवान के कृपा के रूप में स्वीकार करना। इससे ज्यादा लेना और संग्रह करना और इससे कम लेना या संग्रह करना, दोनों भक्ति के लिए प्रतिकूल है। चैतन्य महाप्रभु, और ये मंगलमय नहीं है हमारे जीवन के लिए, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है कि इंद्रियों को ठीक ठाक रखने के लिए जितना जरूरी है निरासक्त भाव से उसे स्वीकार करो, कृष्ण का नाम लो, और भालना खाइवे यार भालना परिवे, और वो प्रसाद जो बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके उसको स्वीकार करो। ये एक भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा किए, जरूरत से ज्यादा संग्रह किए, जरूरत से ज्यादा स्वीकार किए, तो आध्यात्मिक जीवन हमारा भौतिक रस में मग्न होने के कारण हम खो बैठेंगे। पर अगर जरूरत से कम संग्रह करेंगे या जरूरत से कम स्वीकार करेंगे अपने जीवन के लिए, तो भी शरीर का जो साधन है उसको हम संग्रह नहीं संरक्षण नहीं कर पाएंगे और हमेशा चिंतित रहेंगे, और चिंतित रहेंगे तो भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कम खाएंगे या कम संग्रह करेंगे तो चिंता, ज्यादा करेंगे तो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते और भौतिक रस में हम लोग धीरे धीरे अटक जाएंगे। तो इसीलिए अत्याहार को त्यागना बहुत जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अत्याहार दो प्रकार के लोगों के लिए लागू है, एक गृहस्थों के लिए और एक वैरागियों के लिए। तो गृहस्थों के लिए परिवार को संभालने के लिए जितना स्वीकार करना है, संग्रह करना है, उतना करना चाहिए। कमाना और संग्रह करना दोनों धार्मिक तरीके से करना चाहिए। और कहते हैं ये जो संग्रह किया है उससे भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, अतिथियों की सेवा, समाज के परिवार के सदस्यों की सेवा और बाद में खुद की सेवा, इस ऑर्डर में जो भी संग्रह करते हैं हम लोग परिवार के लिए, उसके द्वारा भगवान की सेवा, फिर भक्तों की सेवा, फिर अतिथियों की सेवा, फिर परिवार के सदस्यों की सेवा और फिर खुद की सेवा, इस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। तो अगर जरूरत से ज्यादा लिया, स्वीकार किया और संग्रह किया तो भगवान की भक्ति में बंधन हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कमाना और संग्रह करना, ये दोनों जो है सही तरीके से हमको ध्यान से करना चाहिए। और जहां तक वैराग्यों का सवाल है, संग्रह तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरा चीज है, अगर भगवान की कृपा से जो मिली उनको, जनरली वो लोग भिक्षा के लिए जाते, तो जो मिली अगर उसमें तृप्त नहीं है तो अत्याहार हो गया। जीवार लालसे जई इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जिस जितना भगवान की कृपा से मिली उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर खाना जरूरत से अच्छा भी मिल गया तो उससे जरूरत से ज्यादा भी लिया तो भी वो अत्याहार हो जाता है। एक दिन थोड़ा ज्यादा ही आ गया, भगवान की कृपा थोड़ा ज्यादा आया, कल आया नहीं आएगा, आया नहीं मालूम, चलो कल का भी आज ले लेते, अत्याहार हो गया। तो एक जितना आया उतना, और जरूरत से ज्यादा आया और उसको ज्यादा स्वीकार कर लिया तो भी अत्याहार। और फिर कहते हैं इस तरह से अगर इन चीजों पे बड़े ध्यान देकर, अत्याहार को त्याग कर, भगवान की भक्ति में लगते हुए एक व्यक्ति को कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये हुआ अत्याहार। यानी बेसिकली युक्त वैराग्य, अपने लिए और परिवार के लिए जितना जरूरी है स्वीकार करना और जितना जरूरी है उतना संग्रह करना, इस तरह से। और वो जो संग्रह भी किया उसमें भगवान की, भक्तों की, अतिथियों की, समाज के परिवार के सदस्यों की और खुद की। दूसरा आ गया प्रयासश्च। प्रयास, ये शब्द प्रयास जो है, रूपा जी इसका अनुवाद क्या लिखते हैं, प्रयास का मतलब उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक श्रम या उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अन्य अत्यंत कठिन है। तो भागवत बताता है हर एक व्यक्ति हमको धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थः अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म से ही अपवर्ग से, हर एक व्यक्ति को अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो भी है धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो धर्म से ही अपवर्ग से, पवर्ग यानी प फ भ म, परिश्रम पवर यानी भौतिक संसार, परिश्रम, प थ यानी फेन और ब यानी बंधन, भ यानी भय और म यानी मृत्यु, इसमें फंस जाते हैं। अपवर्गस्य मर्ग मतलब इस भौतिक संसार से परे जाना, तो धर्म से ही अपवर्गस्य, धर्म का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। न अर्थ, धर्म का अर्थ जो है अर्थाय उपकल्पते, सिर्फ सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये नहीं होना चाहिए कि अर्थ अर्थाय उपकल्पते, विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम, अर्थी 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 अर्थ अर्थ, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए बोल के जो लग जाते। तो न अर्थ अर्थाय उपकल्पते, न अर्थस्य धर्मैकान्तस्य, और जो धर्मैकान्तस्य पूर्ण रूप से भगवान सनातन धर्म भक्ति में लगा हुआ है उसके लिए जो अर्थ मिलता भी है, न अर्थस्य धर्मैकान्त कामो लाभाय स्मृतः, अपनी कामना को तृप्त करने के लिए इन्हें लगाना चाहिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, और जो भगवान की इच्छा से सब कुछ मिल जाए, कामना चीज मिल भी गया, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, सिर्फ भौतिक इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। लाभो जीवे तयावता, जितना जरूरी है शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए और भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य एक है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा कि परम सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है उससे, और उस संबंध को जानना और स्थापित करने के लिए लगाना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। न अर्थ यश्चेह कर्म भी, और किसी के लिए नहीं चाहिए उन्हें नहीं चाहिए। तो मनुष्य जीवन है आत्म साक्षात्कार के लिए, और खास भगवान ने बुद्धि दी है इस उद्देश्य से। तो कृष्ण भावना प्राप्ति संबंध अभिधेय और प्रयोजन, भगवान और मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को पुनर्स्थापित कैसे किए और क्यों करना चाहिए, ये जानकर उस पद में उस पग में लगना ये जरूरी है। तो हाँ, धर्म के बिना नहीं होगा, धर्मस्य धर्मेण ही न पशु भी समान, अगर धर्म के अनुसार नहीं पालन करेंगे चलेंगे नहीं तो फिर पशु के समान हो जाएंगे काम सब ये इच्छाओं को पूर्ण करना। तो भगवान की भगवान ने ऐसा नैसर्गिक नियम ऐसा बनाया है कि एक्चुअली अब कहीं भी हम लोग पिछले थोड़े दिन पहले एक चक्कर गए थे, और वहां से उससे पहले गांव में सब गए थे बंगाल में, इसमें ईस्ट बंगाल बांग्लादेश गए थे हम लोग। बांग्लादेश में कितने सारे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, सब जगह अपना अपना कुआं है, छोटे छोटे वो बोरवेल डाला हुआ है बस, और एक एकड़ जमीन है, दो गाय है और खुश है सब लोग। अरे चार चौदह चौदह भाजी बनाते छोटे छोटे, इतने इतने भाजी फर्स्ट क्लास अपने घर में सब तोड़ के लाते हैं, फ्रेश भाजी बनाते हैं, राइस मिलता है वहां खाते हैं, कोई कमी नहीं उनको। हाँ फटे कपड़े पहने, देखने में ऐसा लगता है कि बड़े गरीब है वो, बहुत खुशी है वो, कभी कोई खाने की कमी नहीं उनको। फर्स्ट क्लास गाय का गोबर हो ऐसा, एक डंडे में ऐसा गोबर डालते, मैं बोला डंडे में ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा गोबर का डंडा, उसको सुखाते जैसा हम लोग ऐसा गोल गोल डालते ना चपाती जैसा दीवार के ऊपर, उसको हम लोग गर्म पानी गर्म करने के लिए उसका उपयोग करते हैं फ्यूल जैसा। वो लोग क्या करते हैं, एक डंडा होता है, डंडे के ऊपर ऐसा गोल डाल देते आइसक्रीम जैसा, सुखा देते और उसको ऐसा घुसाते सीधा ऐसा घुसाते, जलने लगता है एकदम फर्स्ट क्लास। तो हर एक घर में ऐसा डिजाइन में सब डंडा डंडा डाल के रखा हो, बहुत सुंदर, वो भी इतना सुंदर से डालते पता भी नहीं लगता है कि सुखाने के लिए रखा हो, कुछ डिजाइन बना के रखा लगता। तो कोई कमी नहीं उनको, सब खुशी है, भले एक छोटा सा एक लंगोट जैसा पहन के खेलते रहते बच्चे, और वो भी क्या खेलते रहते, एक लकड़ी लिया दो लकड़ी लिया बस उसी में खेलते रहते, दिन भर खेलते रहते वो लोग। कोई यहाँ हम लोग नए नए खिलौने लाए, वो चार दिन के अंदर टूट दिया, वो अभी नया चाहिए उसको, एवज नहीं रे, एक डोगली एक डंडा ऐसा कुछ तो, एक दो डंडा लेके कुछ तो खेलते रहते हो, या एक छोटा सा एक पत्थर पे ऐसा कुछ बना दिया उसमें खेलते रहते हो खुशी से एकदम, और व्यस्त रहते दिन भर पूरा बिजी रहते हो, खाना पकाओ खाओ भक्ति करो फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो समाज भगवान ने नैसर्गिक रूप से ऐसा बना के दिया सबके लिए, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब कुछ है आत्म साक्षात्कार के लिए, गधे के समान काम किए बिना जितना जरूरी है वो सब मिल जाता है। और हमने इतना ऐसा कुछ बना के रखा है, आर्टिफिशियली इतना चीज बनाया है कि उसके बिना तुम्हारा जीवन है ही नहीं, अगर ये तुम नहीं लिए तुम्हारा जीवन व्यर्थ। और एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे ही, कभी दाल दाल के लिए एडवर्टाइजमेंट होगा अभी देखा, कभी राइस के लिए राइस खाओ एडवर्टाइजमेंट, या सब्जी खाओ, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत, दाल राइस सब्जी सब खाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करो या नहीं करो, एडवर्टाइजमेंट मतलब तुमको जरूरी नहीं है पर जबरदस्ती जरूरी, तुमको कन्विंस करना है कि जरूरी है तुमको, इसीलिए इतने बड़े बड़े बोर्ड। तो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन इज नॉट केयरिंग फॉर गॉड रियलाइजेशन, misuses his intelligence for getting more than necessary and simply eat to satisfy the tongue. नहीं जानता है जीवन का उद्देश्य, न जानते हुए फंस जाता है, सब भाग रहे इसीलिए हम भी भाग रहे, क्यों हमें नहीं मालूम, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, भागते 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 ऐसे ही हो गया बस। तो और इस चक्कर में कृत्रिम रूप से इतनी सारी जरूरतें बना ली हमने, बड़े बड़े फैक्ट्री खोला है, बड़े बड़े कत्तल खाने खोले, बड़े बड़े वेश्याघर खोले, बड़े बड़े दारू के दुकान खोले, ये सब चलाने के लिए, इतना बड़ा समाज को चलाने के लिए जो कोई भी जरूरत नहीं, ये सब बिना कुछ रहते हुए भी आराम से हजारों साल से ये संस्कृति चली आई, वैदिक संस्कृति चली आई है, ये पिछले 200-300 सालों में ये सब हुआ है, बड़े बड़े फैक्ट्री बड़े बड़े कत्ल खाने, करोड़ों में लाखों में लोग ऐसा मारे जाते हैं, यहां पशु प्राणियों को पैकिंग करके, पैकिंग इंडस्ट्री, मीट पैकिंग इंडस्ट्री, खून में वो नदी जैसा बहता जा, और इतने बड़े बड़े दारों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वेश्याघर, खास करके सिटी में जाएंगे तो आप पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट, नॉट एरिया डिस्ट्रिक्ट, इतना मतलब अननेसेसरी बना के रख दिया हम। तो और अगर लोगों को बोला जाए कि नहीं सिंपल जीवन जियो सादा जीवन, तो उनको लगता है कि हम लोग वो वनमानुष बन गए हम लोग, आप लोग क्या हमको ऐसा क्या फिर पड़ा पहन के बाद में धनुष बाण लेके ऐसा कह जाएंगे, ऐसा सोच रहे हो, लोगों को लगता है ऐसा कि हम लोग उन लोगों को एकदम आदि मानव बना दे रहे, लोगों को ऐसा लगता है, सिंपल जीवन जियो बोलो तो उनको लगता है कि हम लोग प्रिमिटिव मैन ऐसा बोल रहे हैं, दुर्भाग्यवश समझ नहीं पाते हूं, कार काम कर करके गधे के समान भाग दौड़ के आदत पड़ गया है, रुको बोलो क्यों रुकना है, रुकेंगे तो कैसा चलेगा जीवन, ऐसा लगने लगता उनको। एक्चुअली व्हाट इज रियल एंडेवर, प्रयास, थोड़ी बहुत प्रयास है, थोड़ी बहुत प्रयास करनी चाहिए, और वो प्रयास क्या है, तस्यैव हेतो प्रयते तको विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवद अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। प्रहलाद महाराज कहते हैं बस इस चीज के लिए प्रयास करो और सब चीज जितना आपके लिख में लिखा है वो मिल ही जाएगा आपको, तस्यैव हेतो प्रयते, तो प्रयास सिर्फ उतने चीज के लिए करना है, न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः, ब्रह्मलोक से लेकर नीची और पाताल लोक तक ढूंढे तो भी आपको नहीं मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला, ये आब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन हो चुका, कहां भी जाओगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर, मनुष्य योनि में एक ही चीज है, वो तरीका जिसके द्वारा हमेशा के लिए इस भौतिक संसार से परे जाने का जो तरीका है भक्ति का, वो उसके लिए प्रयास करना चाहिए मनुष्य योनि, बस तस्यैव हेतु, इस हेतु प्रयास करना चाहिए। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर यद, क्यों तल लभ्यते दुखवत अन्यथा सुखम। प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम आत्यंतिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नता। हमें से कितने लोग दुख के लिए प्रयास करते, कोई है हाथ उठाइए जो दुख के लिए प्रयास कर रहे, दिन भर कोशिश कर रहे एक न एक दिन हमको ज्यादा दुख मिले। और कितने लोगों को दुख एकदम नहीं आया आज तक, हाथ उठाइए। कभी दुख नहीं आया, किसी ने भी कोशिश नहीं किया पर दुख आया ना। वैसे ही प्रहलाद महाराज कहते हैं बिना सुख की चेष्टा किए भी जितना सुख लिखा हुआ है मिलने वाला है आपको, मिलने वाला है। और हम देख सकते हैं कुछ लोगों के जीवन में कुछ काम नहीं किया, टाइम टू टाइम फैसला सबका मिलता रहता है सब कुछ, हमको ईर्ष्या होता है अरे ऐसा कैसा खा के हाथ खा पी के रहता है, कभी इसको काम करते नहीं रहते, इतना मोटा पेट ऐसा आराम से खुशी से रहता है, और दूसरा व्यक्ति इतना गधे के समान काम कर रहा है फिर कुछ नहीं मिलता उसको है। उसके भाग्य में लिखा है दुखवत अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा, मिलने वाला है। तो जो वो मिलना वो मिलने मिलने वाला ही है, दुख जितना लिखा है सुख जितना लिखा मिलने वाला है, उसके लिए कोशिश मत करो, कोशिश सिर्फ उस चीज के लिए करो जो फिर से मनुष्य होनी नहीं मिलने वाली, सुलभम सुदुर्लभम, दुर्लभ है ये, उसके लिए चेष्टा करो आप। तो इस प्रयास जीव से तत्व जिज्ञासा, ये एक प्रयास के अलावा दूसरा जब प्रयास है इसको कहते हैं प्रयासश्च, भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो। अलग अलग प्रकार के प्रयास बताए गए हैं भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं। एक है ज्ञान प्रयास, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो अजित जितोपि अपितै स्त्रिलोक्यम। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयास उदपास्य, उदपास्य मतलब लात मारकर निकाल दो। कौन से ज्ञान का प्रयास? ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म में लीन होने के लिए हमें प्रवृत्त करता है, ऐसा मायावादी ज्ञान, ऐसा निरर्थक ज्ञान। तो भगवान भी कहते हैं मुंडक उपनिषद में कहा गया है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेदसा न बहुना श्रुतेन, बड़े बड़े ना हम वेदैर न तपसा, भगवान कहते हैं गीता में ना हम वेदैर, वेदों से पढ़ने से नहीं, वेदेशु दुर्लभम। ऐसे सिर्फ वेदों के पढ़ना जस अपने आप को बड़ा एक बताने के लिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं इतना मैं बोल सकता हूं, या ऐसा ज्ञान जो शुष्क ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म में लीन होने को जो प्रवृत्त करता है, ऐसे ज्ञान को त्याग देना चाहिए। भगवान भी कहते गीता में क्लेशो अधिकतर अस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिरवाप्यते। क्लेश अधिकतर फालतू ये चेष्टा है अव्यक्त, जो अव्यक्त ब्रह्म की ओर वो ज्ञान प्राप्त करके भगवान में लीन होने की जो चेष्टा कर रहा है, ऐसे ज्ञान को त्याग दो। वो ज्ञान जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को जागृत करता है वो अनुकूल है। दूसरा है कर्म प्रयास। कर्म प्रयास का मतलब क्या? जैसे भगवान कहते हैं भागवत में, वेदव्यास जी कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं धर्मस्य ही धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय न उत्पादेत यदि रतिम श्रमये वही केवलम। फालतू श्रम हो गया आपका, सारे रीति रिवाज नियम सबका पालन कर रहे हैं आप धर्म के नाम पर, टाइम टू टाइम पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, सब कर रहे, पर अगर भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं हो रहा है तो आपके सारे नियम का पालन करने का उद्देश्य क्या है? श्रमये वही केवलम, कर्म प्रयास हो गया। वो कर्म प्रयास, प्रयास का मतलब भगवान की भक्ति के लिए प्रयास, भगवान की प्रेम जागृत होना चाहिए उसके लिए जो प्रयास है वो सही प्रयास है। जैसा सिग्नल है यहां से मुझे कोल्हापुर के एक कोने से दूसरे कोने को जाना है तो मैं सिग्नल का पालन करता हूं, सिग्नल सरकार ने बनाया। सिग्नल बनाने का उद्देश्य क्या है? बिना कोई एक्सीडेंट के सुरक्षित तरीके से मैं कोल्हापुर की एक जगह से दूसरी जगह जहां मैं जाना चाहता हूं वहां पहुंचू। अगर कोई सुबह सुबह निकलता है और सारे सिग्नल का पालन करता है, लाल बत्ती तो रुकता है, हरा बत्ती तो घूमता है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और शाम को जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया और बोला मैंने सारा सिग्नल, एक भी सिग्नल नहीं तोड़ा मैंने, पर पहुंचे किधर? अरे सिग्नल पालन करने का उद्देश्य है, लक्ष्य है वहां पहुंचने में सुरक्षित रूप से बिना कोई एक्सीडेंट। पर आप बोले नहीं, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी, एक भी नियम नहीं तोड़ा, पर जहां से निकला था वहीं पहुंचा शाम को। श्रम ये वही केवलम, पेट्रोल लॉस ही केवलम, तुम्हारा पेट्रोल बर्बाद हो गया, तुम्हारा दिन बर्बाद हो गया, तुम्हारा समय, क्योंकि जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। नियम पालन करने का उद्देश्य लक्ष्य में पहुंचना। अरे लक्ष्य नहीं मालूम इसको, सुबह ऐसे ही बस रोमिंग लोफिंग, लोफर बोलते ना, लोफर, लोफर मतलब उसको कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे घूम रहा है बस, जहां मन आया वहां घूमते फिर वापस वहीं आता है। तो ब्रह्मांड भ्रमित है, बस नियम का पालन कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, वापस वहीं पहुंचे फिर से। नियम का पालन करने का उद्देश्य है भगवान वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, भगवान को जानना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। वो नहीं हो रहा है तो सारे आप जितना भी नियम का पालन कर रहे हैं, भले इवन भक्ति का भी नियम का पालन कर रहे हैं, श्रमये वही केवलम। कर्मकांड और वैधी भक्ति, आप देखेंगे बाहरी रूप से दोनों एक ही लगता है। कोई वैधी भक्ति कर रहा है, नवदा भक्ति का पालन कर रहा है, कोई कर्मकांड कर रहा है, दोनों शास्त्रों का पालन कर रहे हैं पर अंतर जमीन आसमान का है दोनों में। भले हम कर्मकांड से शुरू करें चिंता नहीं, हम लोग सब कृष्ण भावना में आने से पहले कर्मकांडी थे, चलेगा, कर्म के पाले सब पूजा करते थे, वो करते थे, वो करते थे, बहुत सारे करते थे, सब धर्म का पालन करते थे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे हम लोग। वर्णाश्रम धर्म का पालन मतलब शरीर की देखभाल करना, मन को ठीक ठाक रखना, आत्मा को प्रगति करना, समाज की सेवा करना। शरीर का देखभाल नहीं करेंगे बीमार पड़ जाएंगे, मन का देखभाल नहीं करेंगे पागल हो जाएंगे, आत्मा का देखभाल नहीं करेंगे अधोगति हो जाएगी, समाज का सेवा नहीं करेंगे बड़े स्वार्थी बन जाएंगे। तो ये सब करना जरूरी है, तो इसीलिए बहुत सारे नियम बताए गए। पर कर्मकांड और भक्ति जो है वैधी भक्ति, इसमें अंतर क्या है? कर्मकांड और वैधी भक्ति में अंतर यह है, कर्मकांड में ज्यादा बहुत प्रकार की देवी देवताओं की पूजा बताई गई है, ये प्राप्त करना है तो ये देवी का करो, ये करना है तो इसको करो, ये करना है तो ये देवताओं को करो। पर जब वैधी भक्ति में आ जाता है तो उसको मालूम है कि यथा तरोर मूल निषेचने, जड़ में पानी डाल दिया तो धड़ डाली पत्ता सब पहुंच जाएगा। भगवान यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान को प्रसन्न करेंगे ऑटोमेटिकली सब देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा, भौतिक चीजों को सम्मान देना, वो बहुत रहता है कर्मकांडियों में। मुझे मालूम है हम लोग बहुत पहले, कई साल पहले मैं जब छोटा था तो हम लोग पिक्चर देखने जब जाते थे, पिक्चर के बाद झंडा फहरेगा, तिरंगा झंडा, जन गण मन सब खड़े हो जाते। एक तो मौज मस्ती करने गए, फिल्म देखने गए, उसके बाद वो झंडा फहरेगा, तिरंगा झंडा, वो ब्लैक एंड व्हाइट था, तिरंगा भी नहीं था वो, और जैसा जन गण मन सब खड़े हो जाएंगे। तो एक भौतिक प्रकार का सम्मान है, पर जब जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में प्रगति करते जाएंगे, जो भगवान से संबंधित जो भी वस्तु हो उसको हम सम्मान देना सीखेंगे, और सब चीजों को ठीक है पर एक्चुअली सम्मान, हृदय से सम्मान उन चीजों को देंगे, कोई भी चीज भगवान से संबंधित हो उन चीजों को हम ज्यादा सम्मान देंगे। तीसरा, बहुत प्रकार के हिंसा अलग अलग प्राणियों पे वो चालू भी रहता है। धार्मिक लोग भी हैं पर इसको ये बलि चढ़ाना, उसको एक मुर्गी चलाना, उसको ये चढ़ाना, उसको ये चढ़ाना, वो भी चालू रहता है धार्मिक लोगों का। और जैसे भगवान की भक्ति में प्रगति करते जाते हैं तो हरेक जीव के प्रति हिंसा जो है धीरे 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 कम हो जाता है, हमको श्रद्धा बढ़ जाती है। हमको नहीं, भगवान को प्रसन्न करेंगे तो काफी है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए नवदा भक्ति काफी है। तो दूसरे अलग अलग ये जो बहुत सारे चीजें हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है। और पांचवा, कर्मकांडी लोगों में सम्मान सिर्फ भौतिक रूप से जाति के ऊपर देना, कोई ब्राह्मण है तो उसको प्रणाम करना चाहिए, कोई ब्राह्मण है तो उसको जो भी कोई कितना भी कोई उल्टा सीधा कहे उसको सम्मान देना चाहिए, वो जैसा भी हो, पिया भी हो पर वो संस्कार के लिए आता तो उसको सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। पर जैसे जैसे भगवान की भक्ति में प्रगति करते जाते हैं उस समय भगवान से संबंधित जो वैष्णव, भले वो नीच योनि से क्यों ना हो, एकदम वो क्या बोलते हैं चांडाल योनि से भी क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव बन गया है वैष्णव को हम सम्मान देंगे। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु नस्या, अगर वैष्णव नहीं है वो उसको हम उतना सम्मान नहीं देंगे जितना हम वैष्णव को देंगे। तो इस तरह से कर्मकांड और वैदिक भक्ति में बहुत धीरे धीरे अंतर, और जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ते जाती है तो धीरे धीरे वो कर्मकांड चीजें कम होते जाते हैं हमारे जीवन में अपने आप। तो इस तरह से वर्णाश्रम का नियम पालन करते हुए जैसे जैसे वैदिक भक्ति बढ़ते जाएगी दूसरे चीजों के लिए हमको समय नहीं मिलेगा, और समय नहीं मिलेगा तो अपने आप वो सब छूट जाएंगे, पर भक्ति बढ़ जाएगी हम। तो भक्ति के प्रगति होने से वर्णाश्रम के लिए बहुत सारे जो रीति रिवाज है वो धीरे धीरे कम अपने आप हो जाएंगे, और जो भी वर्णाश्रम का नियम पालन कर रहे थे वो धीरे धीरे भक्ति बन जाएगी, भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और जो भी हम पालन कर रहे हैं वो भक्ति के सेवक बन जाएंगे, वो भक्ति के लिए अनुकूल बना देंगे उसको हम, वो भी चीजों को भी वो भक्ति के अनुकूल बना देंगे अपने आप, उन नियमों को भी, तो भक्ति को श्रेष्ठ रख के उसके उनके अनुकूल बना देंगे वो। तो इस तरह से ये कर्म प्रयास धीरे 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 कम अपने आप हो जाएगा अगर वैदिक भक्ति बढ़ेगी हमारे जीवन में। फिर वैराग्य प्रयास, अलग से वैराग्य, ये सब छोड़ना वो सब छोड़ना कोई जरूरत नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहेतुकम्। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेंगे जो भी भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है उन चीजों के प्रति वैराग्य अपने आप आ जाएगा, अलग से किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप जो अनुकूल प्रतिकूल चीजें हैं छूट जाएगी अगर भगवान की भक्ति जो नवदा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम ये बढ़ाएंगे हमारे जीवन में। तो वैराग्य प्रयास अपने आप अलग से करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगी भक्ति करने से। बहुत लोगों का ये अनुभव है, भक्ति में आने से पहले वो मांसाहार छोड़ना चाहते थे कि ये छोड़ना चाहते थे या सिगरेट छोड़ना चाहते थे, कुछ बुरी आदतें छोड़ना चाहते थे, तो ये सब करना चाहते थे, अलग से कोशिश करना चाहते थे, पर वो छोड़ते थे फिर से शुरू हो जाता था उनका। पर जब से उन्होंने भक्ति शुरू की अपने आप सब छूट गया, दूसरा चीज ऑटोमेटिकली फिर से वो आया ही नहीं, अभी तो वो सोचते भी नहीं, उनके मन में विचार भी नहीं आती। वो पहले किसी बड़ी मुश्किल से रोक साते थे अपने आप को, पर अभी तो वो विचार भी नहीं आते ऑटोमेटिक। तो अलग से वैराग्य प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। फिर योग प्रयास, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। पर भक्ति जो है योग की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, समाधि ऑटोमेटिकली, एक भक्ति योगी ऑटोमेटिकली बेस्ट योगी है, और दूसरे योग की जो परिपूर्णता है वो ऑटोमेटिकली। हम देखते हैं कि बड़े बड़े अष्टांग योगी भक्ति में पतन हो गए, उन लोगों का पतन हो गया। पर भक्त जो है, बड़े भले वो बद्ध अवस्था में से आया हो पर फिर भी आराम से प्रगति कर जाएगा अगर भगवान की भक्ति नवोदय भक्ति में टिके रहेगा तो। और सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल है छोड़ने वाला, वो है भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रतिष्ठा के लिए प्रयास। भक्ति में आने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग, भक्ति में भी हम देखते हैं प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना, दिखावट की भक्ति करेंगे पूरा दुनिया को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना महान भक्त हूं, लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं, देखो कितना मैं महान। तो प्रतिष्ठा का प्रयास, ताकि लोग मुझे प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, उसके लिए प्रयास। सर्व त्यागेपि अहेयायाः सर्वानर्थ भुवश्चते कुर्युः प्रतिष्ठविष्ठाया यत्नम अस्पर्शने वरम। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अगर भी एक व्यक्ति सारी भौतिक इच्छाओं को अगर छोड़ देगा, फिर भी प्रतिष्ठा के प्रति जो इच्छा है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये जो प्रतिष्ठा के प्रति जो इच्छा है, ये विष्ठा के समान है, मल के समान है और सारे अनर्थों का मूल कारण है। इसीलिए एक व्यक्ति को बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े केयरफुली इस मल जैसा या विष्ठा जैसा, जो गंदगी जैसा जो प्रतिष्ठा का प्रयास है, इसको त्याग देना चाहिए। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये उपदेश जो है ये बहुत ही गंभीर है और इसीलिए बड़े ध्यान पूर्वक और बड़ी होशियारी से हमें इस प्रयास को त्याग देना चाहिए। तो किस प्रकार का प्रयास अनुकूल है, जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। नवदा भक्ति के लिए जो प्रयास है, वो प्रयास जो है वो अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है, वो प्रयास नहीं है, वो स्वाभाविक है और वो हमको लक्ष्य की ओर पहुंचा देगा। इसको स्वीकार करना चाहिए, हमें अटक नहीं जाना चाहिए पर इसको स्वीकार करके प्रगति करना चाहिए। जैसा तीर्थ स्थान में जाने का प्रयास, वो प्रयास है, पर अगर वो तीर्थ यात्रा में हम इसलिए जा रहे हैं कि भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो और भक्तों का संग हमें मिले, अगर इस इच्छा से हम लोग भक्तों के संग में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो वो प्रयास प्रयास नहीं है, वो अनुकूल है। बहुत सारे लोग व्रत लेते हैं, वो प्रयास है, पर अगर ऐसे व्रत जो भगवान की भक्ति में अनुकूल हो, एकादशी का व्रत या जन्माष्टमी या विष्णु की जो आविर्भाव दिवस है, उन दिनों का जो व्रत बताया गया है, वो व्रत जो है वो अनुकूल है, वो प्रयास नहीं है। वैष्णव की सेवा के लिए जो प्रयास, वैष्णव की जो सेवा करने का जो कुछ मौका मिले उसके प्रति लालच होना और प्रयास करना, वो प्रयास अनुकूल है। भक्तों के संग में आने का प्रयास, वो प्रयास अनुकूल है, वो प्रयास नहीं हो। भगवान की सेवा करने के लिए, मंदिर में भगवान की सेवा करने का जो प्रयास है, वो स्वाभाविक रूप से हृदय से स्फुरित होता है, वो प्रयास नहीं। संकीर्तन में जो हमारे हृदय को खोलता है पूर्ण रूप से, भक्ति को विस्तृत बढ़ाता है, वो प्रयास जो है, वो प्रयास, इन चीजों का यहां नहीं वर्णन किया गया है, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है या भक्ति नष्ट हो जाएगी, वो प्रयास नहीं है, ये अनुकूल प्रयास है। तो एक क्या बोलते हैं, भक्त के लिए जो गृहस्थ है उनके लिए क्या प्रयास है, अपना जीवन को एक सरल, हमारे प्रवृत्ति के अनुसार जो हमारा कार्य है, जो भी कार्य में हम लगे हुए हैं, वो हमारे प्रवृत्ति के अनुसार एक कार्य को स्वीकार करना चाहिए, मतलब अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, और जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो ऐसा कार्य को स्वीकार करो और जीवन को स्वाभाविक रूप से चलने दो। और भगवान का नाम और भगवान का स्मरण और भगवान के हमारे साथ जो संबंध है उसको याद रखते हुए चलाते रहो, तो वो प्रयास प्रयास नहीं है। तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वर्णाश्रम को भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल बना दो, मतलब जो भी धर्म पालन कर रहे हैं गृहस्थ धर्म भगवान की भक्ति में अनुकूल बना दो, और ऐसा भक्ति में लगो जो प्रयास से अलग हो, ये जो ज्ञान प्रयास कर्म प्रयास इत्यादि जो हमने कहा उससे वो अलग हो। और स्वाभाविक रूप से जितना भगवान की कृपा से अपने आप होता है उतना कमाओ और उतना संग्रह करो ताकि परिवार के सदस्य ठीक ठाक चलते रहे, और हमेशा हरि की जो गुणगान है उसको कभी भूलना नहीं, और भले सुख हो या दुख हो, सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो, सोते हो या जाग रहे हो, हरेक स्थिति में हरि की गुणगान होते रहना चाहिए, उसको केंद्र में रखते हुए परिवार को चलाना। ये प्रयास से विरक्त जो है, मैं प्रयास से रहित है ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन अनुकूल है। और जो वैरागी है उनके लिए कोई संग्रह करने की जरूरत नहीं, प्रयास करने की जरूरत नहीं, भीख मांगते हुए शरीर को निकाल मेंटेन करो। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी की कृपा से वैरागियों को ऐसा उतना जरूरत नहीं है, उतना तपस्या करने की जरूरत नहीं, सब भगवान की कृपा से हो जाता है। पर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में हमको लगना चाहिए, ये वैराग्यों को, और कोई भी बिजनेस में नहीं लगना चाहिए। वैराग्यों का नियम है कोई भी वो बिजनेस में नहीं लगे, नॉट एंगेज इन एनी एंटरप्राइज। और भगवान की भक्ति नम्रता के साथ और सरलता के साथ करते रहे, और इस तरह से जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपम सुषमिक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाक, इस तरह से अगर चलते रहेंगे भगवान की भक्ति में तो बिना कोई प्रयास के, प्रयास मतलब वो प्रयास जो भगवान की कृपा, बस उसके लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, नवदा भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, भक्तों की सेवा के द्वारा, उनकी कृपा प्राप्त करने का जो प्रयास है उतना ही प्रयास, और जितना जरूरी है उतना बस संभालने के लिए। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशाग्नु गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिमो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वम्। ब्रह्मा जी कहते हैं चौथे अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला के बाद भगवान को कहते हैं अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय, आपके चरण द्वय जो हैं, चरण कमल जो हैं, प्रसाद लेश अनुग्रहीत एव ही, किसी को अगर आपके चरण कमलों का इतना भी कृपा मिल गया, लेश अनुग्रहीत एव ही जानाति तत्वम, वो व्यक्ति समझ जाएगा भगवान महिमन, भगवान की महिमा का जो ये है ज्ञान है, उसको थोड़ा कृपा मिल गया तो अपने आप जान जाएगा। न च अन्यम एकह अपि चिरम विचिन्वन, पर करोड़ों करोड़ों जन्मों का अगर वो प्रयास करे कि मैं अपनी कोशिश से करूंगा, नहीं मिलेगा उसको। पंतास्तुको की शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना सोप्यस्ति यत्र प्रपदसिन्नि अविचिन्त्य तत्ते, प्राप्त नहीं कर पाएगा। करोड़ों साल का तपस्या करे, कितना भी परिश्रम करे, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करे, नहीं प्राप्त कर पाएगा। जबरदस्ती आप भगवान को बुला नहीं सकते, उनकी जब कृपा होगी और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी प्रयास है वो प्रयास सिर्फ मनुष्य जीवन में हमको करना चाहिए, वो प्रयास अत्याहार प्रयास नहीं है। और एक महत्वपूर्ण चीज, तीन हम लोग कवर करेंगे आज कम से कम। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है प्रजल्पो, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो। प्रजल्प प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना, इसको कहते हैं प्रजल्प। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, बारिश के दिनों में मेंढक जो है टर्राता, टर्र 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 करता रहता हो, तो प्रजल्प ऐसे ही है, वो टर्र टर्र करता है, उसको लगता है कि जो स्त्री मेंढक है वो सुनेगी और आएगी पास में, पर उसे नहीं मालूम कि सांप जो है उसको समझ जाता है कहां ये मेंढक है और आके उसको निगल जाता है। तो इस तरह से प्रजल्प का मतलब है निरर्थक बातें करना, वो मेंढक के समान टर्राने के बराबर है जो काल सर्प को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं आके निगल के चला जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अननेसेसरीली टॉकिंग अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर, भौतिक विषयों के ऊपर अननेसेसरीली मतलब बिना कोई जरूरत के पढ़ 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 बातें करना, इसको कहते हैं प्रजल। ऐसे बिना जरूरत के जो बातचीत है ये स्वाभाविक रूप से होता है। आप देखिए दो लोग मिलने लगते हैं ना, पता नहीं क्या मिल जाता, वो चलते रहते हैं एक एक घंटा तक, उनका समय कैसा चला जाता पता भी नहीं लगता उन लोगों को। वही अगर और किसी काम में बैठेंगे तो दो दो एक दो दो मिनट में घड़ी देखते रहे, पर ऐसा जब प्रजल्प शुरू हो जाता है इतना मीठा लगता है, समझ में नहीं आता उनको, घंटे घंटे बाहर दरवाजा के पास खड़े खड़े दो घंटा हो जाता है, समझता नहीं हो, और दूसरे समय में घड़ी देखना शुरू करते हैं। तो प्रजल्प क्या है? एक्चुअली प्रजल्प ये शब्द बुरा नहीं है, प्रजल्प जल्पन शब्द से आता है, जल्पन, जल्पन या प्रजल्प का मतलब बातचीत करना। प्रजल्प अपने आप में बुरा शब्द नहीं है, पर क्योंकि आज का दुनिया इतना नास्तिक हो गया है कि स्वाभाविक रूप से जो भी बातचीत है 99.99% नास्तिक ही है, कुछ मतलब फालतू बातें ही होते हैं, इसीलिए प्रजल्प का मतलब फालतू बात नहीं, तो एक्चुअली प्रजल्प का मतलब प्रजल्पन, मतलब बातचीत करना आप एक दूसरे के साथ। तो प्रजल्प का अभी मतलब हो गया है निरर्थक भौतिक बातें जिसका कोई जरूरत नहीं है। वो प्रजल्प जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल हो उसको बड़े ध्यान पूर्वक एक साधक को पहचान कर धीरे 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 छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। अनुकूल प्रजल्प भी होते हैं, भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल प्रजल्प भी होता है, जैसे कीर्तन करना, भगवान के बारे में बातचीत हो रहा है कीर्तन करना, या भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, या शास्त्रों का उच्चारण करना, भगवत गीता भागवत इत्यादि का उच्चारण करना, ये प्रजल्प नहीं है, ये अनुकूल है और भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए, अगर खास करके सही भावना से की जाए और भौतिक इच्छा से विरहित होकर ऐसा सब की जाए, कीर्तन या श्लोकों का रचना या भजन इत्यादि, तो ये अनुकूल है। पर कुछ लोग कहते हैं कि वो के कंप्लीट प्रजल्प त्याग देना चाहिए, कंप्लीट प्रजल्प को त्याग देना चाहिए, पर आचार्य कहते हैं महाजनो ये न गत सपंथा, हमको महाजनों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए जो हमारे लिए मंगलमय है। महाजनों भी बड़े, जैसे सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव, चैतन्य महाप्रभु, प्रहलाद महाराज, उन्होंने भी वो प्रजल्प किया है जो भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है, तो वो प्रजल्प हम कर सकते हैं। बातचीत करना तो छोड़ नहीं सकते हमेशा की, तो अलग अलग प्रकार के प्रजल्प हो है। गॉडलेस, गॉडलेस मतलब नास्तिक प्रजल्प बहुत सारे हैं, संक्षिप्त रूप में उसका चर्चा करेंगे और तुरंत हम पहचान सकते हैं कि कितना प्रजल्प हम करते हैं। एक है फालतू बातें, यूजलेस टॉक्स, ये एक प्रकार का प्रजल्प है जिसको हमको त्यागना चाहिए, जो प्रतिकूल है भगवान की भक्ति के प्रति, बहुत ही प्रतिकूल है भगवान की भक्ति के प्रति। बिना समय बर्बाद किए साधक को भगवान के बारे में या उनके भक्तों के बारे में चर्चा करना एक अलग से बैठकर, ये अनुकूल है, पर जब भी मिलते हैं, साथ में आते हैं, तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, लीला इत्यादियों के बारे में चर्चा करना चलेगा। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तुष्यंति च, उसमें वो तृप्त हो जाते हैं, और रमन्ति च, इसमें रमण करते हैं। तो हमारी तुष्टि या सेटिस्फैक्शन और रमण करना, आनंद लेना, इसमें है। भगवान के बारे में चर्चा करना, क्या हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस शब्द को कैसा समझा जाए, इस विषय को कैसा समझा जाए, इसके बारे में कुछ चर्चा करे तो अच्छा है। पर भौतिकवादियों के साथ जब सामने आ जाते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कितना समय हमारा ऐसे चला जाता है। उससे हमको बच के रहना चाहिए। जितना जरूरी है, जितना हमारा बिजनेस के जरूरी, उतना काम किया, बस खत्म। या ढेर ढेर अखबार पढ़ना। मैं जनरली जब भी मैं आता हूं, पूना से बंबई आता हूं, 3.5-4 घंटा लेता है, तो जनरली मेरा जप हो जाता है, भागवतम पढ़ने का हो जाता है, 2-3 काम हो जाता है मेरा सुबह का। सुबह 7 बजे चढ़ा तो यहां 10:30 बजे पहुंचता हूं, फर्स्ट क्लास, पूरा एकाग्र चित्त होकर मेरा ध्यान, सोलमाला हो जाता है, भागवत हो जाता है, और कुछ मेरा तैयारी करना है तो वो भी हो जाता है। पर मैं देखता हूं दूसरे लोग, एक अखबार लिया ऊपर से लेकर नीचे, एक एक मतलब उसको छान छान के पढ़ते, उसके बाद तुमसे कड़े ना ये गया, ये गया, ये दिया, वो भी पढ़े, वही चीज है उधर, सिर्फ फोटो न्यूज पेपर ने थोड़ा ये एंगल से लिया है बस, फिर वही फोटो फिर से पढ़ेगा उसको, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, वही चीज, वही चीज, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। सब करने के बाद उसमें लोनावाला में थोड़ा वो पाव भाजी उसमें पैक करके लाके खाएगा, उसके बाद धोके उसे फेंक देगा, खत्म। तो कितना ऐसा, ऐसे पुस्तक, ऐसे बड़े सारे नॉवेल्स, ये वो पढ़ते रहते हैं, कितना समय। एयरप्लेन में भी जब यहां से हैदराबाद गया था मैं, हैदराबाद 2-3 घंटे का था, उधर से एक निकाला, एक वो पीछे में वो सीट के पीछे रखा रहता है, उसको पढ़ रहे, पढ़ता है, कितना बार पढ़ा होगा ऑलरेडी, उसको भी पढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कितना समय, ऐसा मूल्यवान समय मनुष्य जीवन का लोग फालतू ऐसे अखबार, जो उसमें मतलब वो जरूरत भी नहीं है उनको, अरे चुपचाप बैठे रहो तो सुनने को मिल जाता तुमको क्या क्या न्यूज है। ये मैंने देखा है, आपको जो भी चाहिए 2 मिनट के अंदर आप समझ सकते हो, किसी आदमी को पूछो सब बता देगा। इतना पैसा खर्चा करना, इतना समय बर्बाद करना। पोस्ट लंच टॉक्स, जनरली ऑफिस में ऐसा, खाना खाने के बाद 1 घंटा थोड़ा आराम, और उस समय जो भी सामने आया उसके साथ बातचीत, और वो बातचीत हवामान से लेकर सब चीजों पर चलता रहता है, वही पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। बस दोनों एक सिगरेट लिया, हाथ में बीड़ी लिया, शुरू हो जाता है। खाना पेट भर के खा लिया, अभी सीट में जाके बैठेगा तो नींद आ जाएगा, तो ऐसे बातचीत शुरू करो, बस समय चला जाता है। तो इस प्रकार का फालतू बातें, बहुत समय हमारा ऐसे चला जाता है। दूसरा है तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क मतलब आर्ग्यूमेंट, सिर्फ आर्गुमेंट करना, आर्गुमेंट करने के लिए आर्गुमेंट करना बस, कुछ उनको उसमें मतलब ले लो, लेना देना नहीं। और अच्छा आर्गुमेंट भी करना है तो कम से कम शास्त्र के आधार पर करो। नहीं, कहां लिखा है शास्त्र में ऐसा? देखो शास्त्र में ऐसा बताया गया, तो शास्त्र के आधार पर आर्गुमेंट करो तो कुछ कुछ तो है उसमें, कम से कम भगवान के संबंधित है वो। बिना शास्त्र के आधार पर नहीं, नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता, तेरे को, अरे मेरे को ऐसा लगता है, दोनों को ऐसा लगता है पर लगता कुछ और है, वो है कुछ और, क्या फायदा ऐसी बातें करके। कहा जाता है बिना शास्त्र के आधार पर निरर्थक ऐसे जो गॉडलेस, मतलब बिना भगवान को केंद्र में रखे ऐसे जो तर्क वितर्क है, ये सिर्फ दिस इज ए गॉडलेस क्वारल, ए नास्तिक झगड़ा एक दूसरे के प्रति और कुछ नहीं। और ऐसे प्रकार के तर्क वितर्क करने से एक मन का शक्ति जो है नष्ट हो जाता है। कितना मन लगाना, पूरा मन की शक्ति लगाना पड़ता है ना सोचने के लिए, इसका नया आर्गुमेंट कैसा निकालू मैं, इसको तोड़ने के लिए कैसा आर्गुमेंट, तो मन की शक्ति अननेसेसरीली वेस्ट हो जाती है। दूसरा, मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन का शक्ति नष्ट हो जाता है। तीसरा, हृदय कठोर हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति हृदय कठोर हो जाता है, वो आर्गुमेंट जीतने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हृदय कठोर हो जाता है आदमी का। और चौथा, स्वाभाविक जो बुद्धि का जो गति है भगवान की चरण की ओर जाता है वो नष्ट हो जाता है, ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसकी। शास्त्र से अनुकूल जो चलने वाली बुद्धि जो भगवान की चरणों में जाने चाहिए शरण, वो बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है उसकी फालतू तर्क वितर्क करने से। ये चार चीजें होती, इसीलिए ऐसे तर्क वितर्क करके कोई फायदा नहीं, क्या फायदा, मन का शक्ति जाता है, मन चंचल हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नैषा तर्केन मतिर आपनेय, कठोपनिषद बताता है कि ये बुद्धि जो है भगवान को समझने की बुद्धि, ये ऐसे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और ऐसा नष्ट बुद्धि भ्रष्ट जिसका हो जाता है वो भगवान की सरल चीजों को नहीं समझ पाएगा। वो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगा सर्पा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब जिसका बुद्धि है थोड़ा बहुत आध्यात्मिक बुद्धि, वो आध्यात्मिक बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी ऐसे फालतू तर्क वितर्क करने से बिना कोई कारणवश। सार्वभौम भट्टाचार्य भी ऐसे तार्किक थे, पर जब उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई तब वो बंद कर दिए सब फालतू तर्क वितर्क। तब उन्होंने कहा, तार्किक श्रीगाल संगे भ्यू भ्यू करी एबे से ही मुखे सदा कही कृष्ण हरि। गोपीनाथ आचार्य ने पूछा उनसे, क्या हो गया आपको आज, तो बिना प्रसाद तो ऐसे बिना दांत घिसे खा लिया आपने। बोले हाँ, पहले तार्किक श्रीगाल, तार्किक श्रीगालों के साथ मतलब वो सियारों के साथ लोमड़ियों के साथ भ्यो भ्यो करता था मैं, बस झगड़ा करके करता था मैं, तुम लोगों के साथ लड़ता था कि भगवान नहीं है या भगवान चैत्य इस कलयुग में आते नहीं, पर एबे से ही मुखे सदा कहे कृष्ण हरि, पर आज महाप्रभु की कृपा से उसी मुख से मैं कृष्ण और हरि का नाम ले रहा हूं। वाराणसी के सन्यासियों ने भी कहा, परमार्थ विचार गेला करी मात्रा वाद, कहां मुक्ति पावा कहां कृष्ण रव प्रसाद। परमार्थ विचार गेला, ऐसे भौतिक तर्क वितर्क करने से परमार्थ का विचार हमारे दिन से हमारे मन से चला गया, करी मात्रा वाद, सिर्फ वाद करते रहते एक दूसरे से, झगड़ते रहते हम लोग बस, नास्तिक झगड़े। पर कहां मुक्ति पाव कहां कृष्ण और प्रसाद, कभी मुक्ति का बारे में चर्चा नहीं किया, कृष्ण के प्रसाद कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त करें इसके बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया। कोई पूछ सकता है ये तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति कहां से उत्पन्न होती है हृदय में, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एक ईर्ष्या के कारण, हृदय में ईर्ष्या हो तो तर्क वितर्क करने की इच्छा होती, किसी ना किसी तरह से इसको हराने का है, बस शास्त्र से नहीं कर सकते तो भले उल्टा सीधा करेंगे किसी ना किसी तरह से, या अहंकार के कारण, तो ईर्ष्या के कारण या अहंकार के कारण ये तर्क वितर्क करने की बुद्धि आ जाती है। और इंद्र तृप्ति के प्रति तीव्र आसक्ति या पूर्ण रूप से मतलब द्वेष, राग द्वेष, पूरा आसक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वाद विवाद, या द्वेष करके उसके लिए वाद विवाद, उसको साबित करने के लिए, या मूर्खतावश, बस मूर्खता, उसको कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ वाद विवाद बस। और कुछ लोग इतने झगड़ालू होते हैं, उनका स्वभाव है वाद विवाद करना, कुछ भी टॉपिक बोलो अगर वो कहेंगे कि ये सही है, आज तुम भी बोलो सही है, बोले नहीं सही है, बस झगड़ा करना उनको बस। तो कुछ ऐसे झगड़ालू लोग होते हैं, उनको वाद विवाद ही करना है बस, या तर्क वितर्क ही करना है, तो ऐसे लोगों के साथ भी हो जाता है। ये हो गया दूसरे प्रकार का आर्ग्यूमेंट्स। तीसरा है गॉसिप। गॉसिप का व्हाट इज द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, गॉसिप समझते हैं आप, गॉसिप आज का ताजा खबर क्या मालूम, उसने क्या क्या मालूम, वो जो पीछे बैठा है ना उसने क्या क्या मालूम, इतना बताता हूं, पास उसमें इतना आनंद आता है, जूस उसमें इतना अमृत है, ये हरि कथा अमृत हरि नाम अमृत सब साइड में चल देते, अच्छा ये सब बाद में करेंगे, पहले ये सुनाओ, उसको कहते हैं गॉसिप। गॉसिप का मतलब है बिना कोई कारण के दूसरी व्यक्ति के बारे में चर्चा करना, तुम उस व्यक्ति के अधिकृत व्यक्ति हो क्या, तुमको अधिकार दिया गया है क्या उस व्यक्ति को सुधारो, तुम उसके गुरु हो क्या, नहीं, तुम्हारा काम क्या है, कुछ नहीं, किस लिए चर्चा करना, बस ऐसे ही। उसने क्या क्या मालूम, क्या करता है मालूम है तुम्हें, अरे मालूम है वो क्या करता है, क्यों मतलब बिना कोई कारण के अगर एक व्यक्ति के बारे में जब चर्चा करती है, इसको कहते हैं गॉसिप, गप मारना जो भी है, अब उसका एग्जैक्ट हिंदी मेरे को नहीं मालूम। टॉकिंग विदाउट रीजन अबाउट अदर पीपल, बिना कोई कारण के दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करने में आनंद लेना, ये। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक्सट्रीमली एडवर्स टू डिवोशनल सर्विस, वे भगवान की भक्ति के लिए सबसे प्रतिकूल है, सबसे प्रतिकूल है, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही, अपने भक्ति जितने बड़ी मुश्किल से भक्ति लता को हमने पाल पोस के ऐसा धीरे 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 बड़ा किया है, और उसमें से उसमें भी समझता नहीं है कौन सा भक्ति लता है और कौन से कोई सी दूसरे जो वीड्स वो बढ़ गए, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद किसी ऐसा कुछ कृपा मिला है कि सद्गुरु का आश्रय मिला है, प्रभुपाद जैसे भक्तों का आंदोलन में हमको एक मौका मिला है, पर उसको फालतू ए चीप आनंद के लिए वो प्रवृत्ति, भक्ति में आने के बाद भी वो प्रवृत्ति नहीं जाती हो, वो प्रवृत्ति नहीं जाती हो। एक बार एक माताजी ने एक प्रश्न पूछा, हमारे मंदिर में एक सन्यासी आए थे, बोलते कभी कभी माताजी लोग ऐसा बैठते सब फूल बनाने के लिए बैठते, तो एक माताजी ने बोला कि हम कभी कभी हम लोग बातें करते रहते तो किसी और के बारे में ऐसी बातें आती, वो ऐसा किया तुम्हें मालूम है उसने क्या किया उसने किया, तो क्योंकि उस समय वो महाराज जी ने बहुत बड़ा एक इसी के ऊपर बहुत इतना कितना खतरनाक है बोल के बोले थे, तो ये बातचीत हुई क्या किया जाए, ऐसा बातचीत लोग करते हैं तो क्या किया जाए, तो बोले हमारा मंदिर तो चौपाटी में है, बोले ऐसा थोड़ा दूर जाने से चौपाटी है, चौपाटी का बीच है ना समुद्र के तट, वहां आप सुबह सुबह गई है क्या, वो महाराज जी ने पूछा, तो बोले हाँ सुबह सुबह देखिए क्या होता है वहां, क्या करते सब लोग सुबह सुबह चौपाटी के बीच में बैठ के एक लोटा लेके जाके क्या करते उधर, बोले बस वो मल विसर्जन करते, बोले तो दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति बिना कोई मतलब के दूसरे कोई व्यक्ति के बारे में अगर ऐसा चर्चा कर रहा है तो समझना मुंह से वो मल विसर्जन कर रहा हो। तो अगर करना ही है वेगम, वो रुक नहीं पा रहे हो, उसका वेग बढ़ गया है, एक काम करो मुंह बंद करके भाग के जाओ चौपाटी में जाके समुद्र के तट पर, सब बोलो जितना बोलना है बोलो, चिल्ला के आ जाओ, यहां मत बोलो कम से कम मंदिर में आके, क्योंकि न केवल तुम्हारा मन दूषित हो कर रहे हो, तुम्हारा मन भक्ति को बर्बाद कर रहे हो, और दूसरे की भक्ति के जीवन की भी भक्ति के ऊपर कुलाड़ी मार रहे हो तुम, बहुत ही खतरा है। क्यों होता है ये? अगेन ये भी ईर्ष्या के कारण, जनरली ईर्ष्या के कारण। कभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है, अरे ये तो अभी मेरे बाद आया, ये कौन सा है? क्या किया था मालूम, ये अब भी बड़ा होगा, पर ऐसा सब इसका है। तो वी डिस्कस अदर्स कैरेक्टरिस्टिक विद ए डिरोगेटरी वे, डिरोगेटरी मतलब उसको नीच दिखाने की इच्छा से उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करना, ईर्ष्या के कारण। दूसरा द्वेष के कारण, किसी का गुणगान सुनने के लिए जब सहन नहीं होता हमको, तो द्वेष के कारण उस व्यक्ति के बारे में किसी ना किसी तरह से वो कोई तो एक परछाई देख के उसको खींच के निकाल दे, या अहंकार के कारण। या चौथा है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब मैं उसे कैसा श्रेष्ठ हूं। दो प्रकार से हो सकता है, एक मैं उसे श्रेष्ठ हूं, अगर मैं ऊपर नहीं जा सका तो उसको थोड़ा नीचे लाओ ताकि मेरा ऊंचा ऊपर चल जाए। दो तरीके से ऊंचा जा सकते हैं हम लोग, एक हमको ऊंचा जाना चाहिए ताकि उससे भी ऊपर चला जाए, और नहीं जा पाए तो कम से कम उसको अपने लेवल से थोड़ा नीचे डाल। तो इस तरह से ये भक्तिविनोद ठाकुर चार कारण बताते हैं, ये बस मतलब बिना कोई कारण के फालतू में अधिकृत व्यक्ति ना होकर कुछ बिना मतलब के ऐसे, खास करके भक्ति में आने के बाद भी, एक आध्यात्मिक संस्था में आकर भी ये प्रवृत्ति को अगर हम नहीं छोड़े तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। पाया हुआ, बड़े मुश्किल से पाया हुआ जो हीरा है भगवान की भक्ति का, करोड़ों करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद, उसको हम लोग अपनी लापरवाही के कारण और एक एक नीच स्थिति के जो आनंद के कारण, तथाकथित इसके का रस के कारण, भौतिक रस के कारण, आध्यात्मिक रस जो है उसको हम लोग खो बैठेंगे। क्योंकि एक बार ऐसा जितना हम करेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, और बाद में जैसे हमने तर्क वितर्क किया, ऐसी बुद्धि हो जाएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, बाद में कुछ समझेगा नहीं, शास्त्र कुछ समझेगा ही नहीं बस, और कृष्ण कथा के बदले ऐसी कथा ही हो जाएगी, ग्राम्य कथा बढ़ती जाएगी। तो इस चीजों से थोड़ा, और इसका परिणाम क्या होगा, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मन भगवान के चरणों में टिक नहीं पाएगा, उसका रस चला जाए, भगवान के चरणों में जो स्थित करने का जो मन है एकाग्र नहीं हो पाएगा। पर अगर किसी के बारे में चर्चा करते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो, तो महाजनों ने भी ऐसे बातों में चर्चा की है दूसरों के बारे में, महाजनों ने ऐसे प्रचलन किए हैं जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, और जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही, जस्ट जितना जरूरी है उतना ही, और वो भी शिष्यों को सिखाने के लिए या एक उदाहरण बताने के लिए, एक पॉइंट बताया, उस पॉइंट के उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का एक उदाहरण लेकर, देखो ये व्यक्ति का ऐसा हुआ, और वो भी जितना जरूरी उतना ही, एक उदाहरण देने के लिए या एक एक पॉइंट को विस्तृत रूप से समझाने के लिए, या कभी कभी समाज में एक गलत धारणा फैली हुई है उस धारणा को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है, या कभी कभी साधारण जन साधारण में कुछ एक गलत व्यवहार नजर आता है उस व्यवहार को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, या खास एक व्यक्ति के बारे में कुछ अगर उदाहरण देना चाहिए उसको दिया जाता है, और एक विषय की चर्चा किए और उसके एक उदाहरण के लिए दिया जाता है, उदाहरण के लिए, जैसा उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो समझेंगे कैसा लोगों को, कुछ भी बोल रहे बस। जैसे भौतिकवाद गलत चीज है, ये उदाहरण के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव गोस्वामी ने भी भौतिकवादियों का एक जो एक जाति है उनका दोष दिखाने के लिए निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, एक श्लोक के अंदर बता दिया कि भौतिकवादियों का जीवन क्या होता है, उनका सार क्या होता है, रात मैथुन करने में या सोने में, और दिन सिर्फ परिवार का देखभाल करने में, काम करने में, बस इस तरह से उनका पूरा जीवन चला जाता है। तो एक समाज में जो गलत प्रथा चल रही है उसको सूचित करने के लिए कभी कभी महाजनों ने एक आदर्श उदाहरण देने के लिए एक श्लोक में या संक्षिप्त रूप में उन लोगों का दिनचर्या क्या है बता दिया। या भगवान कहते हैं गीता में, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, गधे लोग ये लोग जो मेरी शरण में नहीं आते, जो भी भगवान की शरण नहीं आते वो गधे, चार प्रकार के लोग हो सकते, बस गधा, नराधम, माया से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या असुर स्वभाव का। फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जो अपने आप को भक्त कहता है और विषयी चीजों में लगा रहता है उन व्यक्तियों से मैं द्वेष करता हूं। फिर अंधा यथांधी उपनीयमान आते पीश तंत्रा मुरुदाम निबद्धा, भागवत कहता है कि ऐसे नेता जो खुद जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम वो ऐसे अंधे लोग हैं और उनके अंधे अनुयायी दोनों जाके गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो एक ऐसे नेता जिनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है उनका ये करते हुए भागवत ऐसा कहा बताया। फिर चैतन्य प्रभुपाद जी ने भी इनका एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति के बारे में, जैसा वेण राजा बोले तुम कुछ भी बनो कम से कम वेण जैसा मत बनो। वेण जो था वो एकदम नास्तिक था, बोले शिशुपाल जैसे बनो, भगवान को गाली दो, कंस जैसे बनो, कम भगवान से द्वेष करो, हमेशा भगवान के बारे में सोचो, और वीणा जैसा मत बनो, क्योंकि वीणा वो नास्तिक था और भगवान के बारे में सोचा ही नहीं। तो एक उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के बारे में बता गया। या प्रभुपाद जी चित्तरंजन दास के बारे में कहते थे कि रूप गोस्वामी का अनुकरण मत करो आप रूप गोस्वामी करोड़पति थे और एक दिन के अंदर सब कुछ त्याग कर एक कौपीन कंठाश्रित अलग अलग पेड़ के नीचे रहने लगे, गोपी भाव रस अमृता बिलहरी कल्लो, पर मरे नहीं वो। पर चित्तरंजन दास नाम का एक लॉयर था, 1920 में कांग्रेस में ज्वाइन किया उसने, 60,000 रुपया उस समय पगार था उसका महीने भर का, 60,000 रुपया 1920 में, करोड़पति था वो। और गांधी जी ने कहा कि छोड़ दो और कांग्रेस ज्वाइन करो, तो उसने बोला नहीं मैं पैसा दूंगा, बोले पैसा नहीं चाहिए तुम ज्वाइन करो, तो कांग्रेस तुमको 500 रुपया देगी महीने भर में, 500 रुपया मिलता था, मर गया वो थोड़े दिन में, रह नहीं पाया, उसका ऐसा लाइफस्टाइल था। 1920 में 500 रुपया कांग्रेस ने उसको दिया फिर भी वो मर गया, रह नहीं पाया, 60,000 रुपया मिलने वाला, 500 रुपया देगा तो क्या होगा उसका। इसी तरह से तो प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते थे कि अनुकरण मत करो तुम रूप गोस्वामी का, हम नहीं बन सकते रूप गोस्वामी, उनके पुस्तकों का अनुसरण करो, उनके आज्ञाओं का। उदाहरण के लिए चित्तरंजन दास एक करोड़पति था, एक दिन के अंदर वो सब कुछ छोड़ दिया पर मर गया वो। पर ये लोग मरे क्यों नहीं? एक दिन में महान करोड़पति थे और दूसरे दिन के अंदर कौपीन कंठाशित, पर मरे क्यों नहीं ये लोग? गोपी भाव रस अमृत अब्दिल हरी कल्लोल, अंदर से वो गोपी भाव रस कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन कर रहे थे, अंदर से भी रस नहीं बाहर से भी बंद हो गया तो क्या होगा आदमी का, मरेगा ही। कभी कभी हम लोग विश्वामित्र और शौबरी मुनि का उदाहरण देते हैं कि अगर भक्ति नहीं करोगे तो जितना भी बड़े बड़े लोग उनका भी पतन हो गया, तो हम लोग उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति का उदाहरण देते, देखो ऐसा मत बनो, उनके जैसा मत बनो। तो ये जो है ये प्रजल्प अनुकूल है भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि एक तत्व को समझने के लिए एक व्यक्ति का उदाहरण कभी कभी देते हैं, और जितना जरूरी उतना ही देते। हमको विश्वामित्र से द्वेष नहीं है, ना हमको शौबरी मुनि से कुछ लेना देना है, हम लोग सिर्फ उदाहरण देते जो हमने सुना, भाई देखो ऐसा उदाहरण दिया जाता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं, वैष्णव अपराध से होशियार रहो, गोपाल चपल के बारे में, गोपाल चक्रवर्ती के बारे में लिखते हैं, उनको गोपाल चक्रवर्ती है इसके बारे में कुछ द्वेष नहीं है या उनसे ईर्ष्या नहीं है, पर सिर्फ बोलते देखो ऐसा किया और ऐसा उसका परिणाम हुआ, होशियार रहना, आप भी उसमें मत फंसना, नहीं तो ये परिस्थिति हो जाएगी आपकी। तो कभी कभी वैष्णव गण जितना जरूरी है उतना, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उतना ही उदाहरण दूसरों के बारे में खास एक उद्देश्य से करते हैं, बस उसके अलावा किसी, खास करके आध्यात्मिक संस्था में आने के बाद किसी व्यक्ति के बारे में हम में से कोई कोई उतर के आया नहीं हुआ है शुद्ध भक्त। और कलयुग में दोष ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिना ढूंढे चार पांच वैसे मिल जाएंगे। अरे शिशुपाल ने तो भगवान श्री कृष्ण में 100 गलत ढूंढ निकाले एक के बाद एक, फटाफट बोलते गया तो कौवा जैसा काला है, तो है काले है तो क्या हुआ, काले है नहीं तो काला है, ठीक है भाई। कभी कभी भक्तों के संग में चर्चा करते हुए, ऐतिहासिक घटनाओं का चर्चा करते हुए कभी एक अभक्त के बारे में अगर कुछ एक कह दिए तो वो मंगलमय है और भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है और वो प्रजल्प नहीं कहला जाता। इसके अलावा दूसरी चीजें जो हम करते हैं वो प्रजल्प है और वो भक्ति के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। प्रजल्पो षड्भिर भक्ति ही विनश्यति, विनाश हो सकता है हमारी भक्ति में। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही हिचकिचाहट होके जितना जरूरी है उतना अगर सेवा के रूप में करना पड़े तो उतना करना बस, नहीं तो इस मुंह से सिर्फ वचन ले लो, करूंगा तो वैष्णव का गुणगान करूंगा नहीं तो चुप रहूंगा बस, अच्छा है, बहुत सेफ है वो, बहुत मंगलमय है और बहुत ही मतलब सुरक्षित तरीका है। और जो है वो भगवान देखेंगे, जब देखेंगे जितना देखना करेंगे वो, उनको मालूम है कब क्या करना है किसको, या कोई अधिकृत व्यक्ति जो करना है करेगा, हम अगर उसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाए। और दूसरा है डिबेट, डिबेट मतलब क्या, वाद विवाद। जैसे रूप गोस्वामी ने जानबूझ के जीव गोस्वामी को एक उदाहरण बनाकर पूरे दुनिया को दिखाया, रूप नारायण गौड़ी वैष्णवों को निंदा करने की इच्छा से रूप और सनातन गोस्वामी से उसने साइन करा लिया कि आप हार गए, हाँ बोले हार गए भाई, हम तुम महान हो हम हार गए, हम तो कुछ नहीं, तुम जो सही हो बस ठीक है, साइन कर दिया उन लोग। और उसको पता चला कि जीव गोस्वामी अभी बहुत प्रमुख आचार्य होने वाला है, वो इन दोनों का जो नेव्यू, तो उसके पास गए बोले देखो इन दोनों ने साइन किया, तुम साइन करो। बोले कौन साइन किया? बोले रूप और सनातन। रूप और सनातन? मूर्ख कहेगा तेरे को लगता है तुझे ऐसे साइन कर दिए वो, तू इतना पागल है, मैं उनका शिष्य हूं, तू उनको मुझे हरा देखता हूं मैं। 7 दिन तक लगातार बैठकर रूप नारायण को पूरा हरा दिया, और रूप नारायण वो सारा विजय पत्र वापस फाड़ के गमुना में फेंक के भाग गया वहां से। रूप गोस्वामी को जब पता चला तो जीव गोस्वामी को बोले तुम अभी वृंदावन में रहने योग्य नहीं, तुम अपना प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिए तुमने वाद विवाद करके उसको हरा है। बोले वृंदावन में ऐसे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है, निकल जाओ। क्या जीव गोस्वामी का गलती था उसमें? नहीं, ये मूर्ख समझ रहा था कि रूप और सनातन को मैंने हरा दिया है। ये उसकी मूर्खता को उसको बताने के लिए 7 दिन और 7 रात तक बैठकर उसको, बहुत बड़ा विद्वान था वो एक्चुअली, जीव गोस्वामी ने हरा है। पर जब उनको बोला गया कि तुम्हारा गलती है, जीव गोस्वामी ने स्वीकार किया, बोला हां सही बात है, ये मेरा अहंकार रहा। उन्होंने भी दिखाया आदर्श रूप से कैसा हमको स्वीकार करना चाहिए। यस एग्जैक्टली, आप मेरे हृदय की बातें समझ सकते हो। तुरंत वो चले गए तपस्या करने लगे, और बाद में जब सनातन गोस्वामी को पता चला कि बाप रे तुम मर रहा है ऑलमोस्ट ये आदमी, तो ले आए फिर रूप गोस्वामी को मनाए, और फिर बाद में जीव गोस्वामी। तो आदर्श एक उदाहरण देने के लिए कि वाद विवाद करना कितना प्रतिकूल है भगवान की भक्ति के लिए, और इन चीजों में फंस जाना, फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब गलत ढूंढने की प्रवृत्ति, वो मक्खी के जैसा, वो इतना अच्छा बगीचा है उसमें थोड़ा कहीं गंदा है तो वहीं जाके बैठे उनको कैसा। आपने देखा एक बार मेरा पैर पे कुछ चोट आ गया था और थोड़ा ईप भर गया था, क्या बोलते हैं उसको, पस भर गया था, वो मक्खी पूरा घूम फिर के एग्जैक्टली वहीं लैंड होता है वो, फिर उसको हटाया, फिर ऐसा ऐसा इन मिठाई रखा, वो रखा, वो रखा, सब रखा है, एग्जैक्टली उधर ही आके लैंडिंग होता है। भगवान ने हर एक चीज से सीखना पड़ेगा। वो मक्खी को आप कुछ भी रखो पर जहां सबसे गंदगी जगह है वहीं जाके बैठता है। और मधुमक्खी पूरा उल्टा है, पूरे कचरे का पेटी उसमें से एक अगर फूल हो उसमें अमृत जहां वहीं जाके बैठेगी। तो प्रकृति से हमको सीखना चाहिए, वो मक्खी का जो प्रवृत्ति है उसको हटाना चाहिए हमारे जीवन से। हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो दूसरों में देखने का जो प्रवृत्ति है उससे हम लोग गलत ढूंढने की इच्छा करते हैं। ये चोर है, सब चोरी करने आया, मुझे मालूम है चोरी करने आया, अभी देखो करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ही तो पूरा जिंदगी भर किया है वो। तो स्वाभाविक रूप से अपनी जो गलती है वो दूसरों में देखने का जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा गलत ढूंढने की होती है। स्पीकिंग फॉल्सहुड, गलती फैलाना, कुछ गलत मतलब एक्चुअली है भी नहीं सही वो, पर उसको फैलाना, तुझे मालूम है ऐसा ऐसा। अरे भगवान को भी नहीं छोड़े लोग, उस शमंतक मणि ना कृष्ण ने लिया, ले लिया वो, छुपा लिया कहीं, कृष्ण ने ही लिया, अरे द्वारका में और कहीं नहीं, भगवान के होते हुए द्वारका में सब शुद्ध भक्त हैं उनके बीच फैल गया, कृष्ण ने ही लिया शमंतक मणि। वो मर गया, शेर मर गया, मारा उसी ने मारा बेचारे। कृष्ण बोले अरे बाप रे इसको अभी ये इसको वो अपवाद को हटाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, ढूंढने गए और पकड़ के लाए, बोले ये भाई ये रहा तुम्हारा शमंतक मणि, हो गया अभी तो मेरे को अपवाद से बचाओ कम से कम, पूरे समाज में सब लोग बोल रहे कि मैं चोर हूं। हाँ माखन चोर हूं वो ठीक है वो ब्रज में ठीक है, और ये शमंतक मणि का चोर हूं। तो भगवान को ला के देना पड़ा और बाद में माफी मांगे, ठीक है ठीक है ये भी ले लो, और मेरी हृदय की जो मणि है सत्यभामा उसको भी ले लो। तो बोले सत्यभामा को दे दो पर शमंतक मणि नहीं चाहिए पर शमंतक मणि नहीं चाहिए, भगवान के पीछे भी अपवाद पड़ गया, तो कोई आश्चर्य बात नहीं है। और अंत में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं वर्ल्डली टॉक, वर्ल्डली टॉक मतलब गृहस्थ लोगों को भौतिक चीजों के बारे में कभी कभी बातचीत करना पड़ता है, तो जो अनुकूल है और जो भगवान से संबंधित चीजें हैं या कुछ जितना जरूरी उतना करना चाहिए, पर उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए हमको। पर अगर अनुकूल वातावरण हो तो ठीक है। और अंत में निंदा, वैष्णव निंदा, ये सबसे अमंगलमय का तरीका है। और एक व्यक्ति को वचन ले लेना चाहिए कि अगर इस जीवन में मुझे हरि भक्ति प्राप्त करना है तो मैं कभी वैष्णव की निंदा नहीं करूंगा, और इस तरीके से सारे मंगल में प्राप्त होंगे। नहीं तो जिस प्रकार दक्ष प्रजापति का सर्वनाश हो गया शिव जी को निंदा करने के बाद, इस तरीके से हमारा भी सर्वनाश हो सकता है। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयां सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम। और अंत में तो प्रजल्प अनुकूल नहीं है, जितना भक्ति के लिए जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है बड़े ध्यान पूर्वक इसको त्याग देना चाहिए। और सोच कहने से पहले, कोई भी बातें करने से पहले, क्या ये जरूरी है, क्या सही है, क्या फायदामंद है, ये तीन चीज को सोचकर फिर कहना चाहिए। और इस तरह से ये तीन चीज अत्याहार प्रयासश्च जल्पो, ये तीन चीज का के बारे में विस्तृत किया। और कल कोशिश करेंगे, ठीक, कल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे 6:30 या 7 बजे, और कल भी टाइम पे शुरू करेंगे। और शायद ये तीन जो बाकी चीज है वो, और उसके अगले दिन जो अनुकूल चीजें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब प्रतिकूल सुन के साथ शायद डर गए होंगे आज, क्या ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, फिर करना क्या। वो और उसके बाद जो लास्ट दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 सतसंग देहो है आमाए, क्योंकि ये सब से बचना है और ये सब में प्रगति करना है तो ये भगवान के भक्तों के संग में करना है। वो संग कैसे बढ़ाए और घनिष्ठ करे उसकी चर्चा 4th श्लोक में की गई है, जो हम लोग लास्ट दिन में करेंगे। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट है प्रभु जी?
Krishna.